प्यारे बाप दादा की। कल हम सभी ने प्यारे बाप दादा की याद में मग्न स्थिति का अनुभव किया। इस अनुभव के लिए हम क्या कहेंगे, वो हमारी अपनी स्थिति के बल से था या बाबा की शक्ति से था या कल के वातावरण से था, क्या कहेंगे? हम अपने आप को देख सकते हैं कि जो अनुभव हमने किया नेचुरल बाबा की याद में मग्न स्थिति का, वो एक संगठित वायुमंडल का और बाबा की शक्ति का ही प्रभाव रहा। हमारी अपनी स्थिति में कितना बल भरने की आवश्यकता है ये हम सभी ने अनुभव किया, तभी हमारा हर दिन समर्थ हो सकता है या स्नेह में समाया हुआ हो सकता है। तो कल जो बाबा ने, वैसे तो बाबा ने हमें कई मंत्र दिए हैं, बाबा शब्द ही जादू का मंत्र है, है ना? जिस क्षण दिल से बाबा निकलता है, स्मृति में बाबा आ जाता है, तो बाबा शब्द ही जादू मंत्र है। कैसे जादू मंत्र है? क्योंकि बाबा याद करने से सर्वशक्तिमान हमारे साथ हो जाता है, तो स्वाभाविक है जहां अकेली हमारी शक्ति कार्य करती हो वहां सर्वशक्तिमान हमारे साथ हो जाए तो वो कार्य सफल हो ही जाएगा। इस सीजन में तो कितनी बार बाबा ने कहा है, माताओं की मुरली में भी बाबा ने कहा था, पिछले बार भी बाबा ने कहा था कि दिल से उस क्षण बाबा को याद करेंगे तो हजूर हाजिर हो जाएगा। और मैं समझती हूं कि बाबा के बच्चों का ये हजारों अनुभव होंगे कि बाबा को याद किया नहीं और समस्या हल हुई नहीं, है ना? इतना बाबा स्मृति में ही शक्ति है, इसलिए बाबा ने कहा है कि मन मना भव, ये महामंत्र है, क्योंकि बाबा ऑलमाइटी है, गुणों का सागर है, सर्व प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन उनसे प्राप्त करने की जो विधि है वो है मनमना भव, और कुछ नहीं करना है, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, है ना। परमात्मा ने आकर हम बच्चों से क्या मांगा, हमें क्या आदेश दिया? और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारा मन मेरे में लगा दो। मामेव बुद्धि निवेश्य, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। तो बुद्धि का नेत्र हरदम बाबा को देखे, मन उसी का चिंतन करे, ये एक ऐसी नेचुरल स्थिति हमारी बन जाए जो कर्म करते भी, बातचीत करते भी हम महसूस करें कि हमारी इंटरनल जो लिंक है वो बाबा से ही है। और जब मन बाबा में है, कल भी बाबा ने कहा ना कि समाये हुए रहो, है ना, मन उस प्यार में मग्न है, क्योंकि बाबा ने सहज योग सिखाया और एक ही शब्द में हमें कहा कि बाबा की याद का आधार है प्यार। याद प्यार देते हैं ना, भाई हमारा याद प्यार देना, याद का आधार है प्यार। और हम अनुभव सुनते हैं दादियों का कि प्यार प्यार में समान बनते गए, बाबा के प्यार प्यार में गुणों को धारण करते गए। तो मेहनत नहीं लगा, पुरुषार्थ नहीं लगा, लेकिन बाबा के प्यार में ही समान होते गए। तो न लॉजिक की बात रही, न मेहनत की बात रही, लेकिन प्यार में नेचुरल व्यक्ति फॉलो कर लेता है। तो वो दिल से सच्चा प्यार बाबा से, वो हमें नेचुरल योगी बना देता है। इसलिए दादी हमेशा पूछती है, मैं तो अनुभव करती हूँ, जब जब कुमारियों की भट्टी होती है, दादी अक्सर कुमारियों से पूछती है कि कौन सी बात अच्छी लगती है, ज्ञान अच्छा लगा, सेवा अच्छी लगी, सेंटर अच्छा लगा, ब्रह्मा कुमारियां अच्छी लगी, नहीं, बाबा किसको अच्छा लगा है। बाबा से प्यार कितना है, तो ये चेक करने की बात है अपने आप को भी, क्योंकि वो हमारी मूल बेसिक चीज है। बाबा से प्यार है तो सब कुछ आसान है, और बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा से प्यार नहीं है तो सब कुछ करने पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। बल सेवा भी हम बहुत करेंगे, ज्ञान भी अच्छा सुना देंगे, धन भी लगा देंगे, लेकिन हम यहां मूल किस कार्य के लिए आए हैं? जिसका ज्ञान सुन रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिनका ये परिवार है, उस बीज से प्यार है। कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी शुरू में आपस में बहुत प्यार होता है, बैठते हैं, मिलते हैं, घंटों तक बातें करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, गृहस्थी में प्रवृत्ति में इतने व्यस्त हो जाते, आपस में बैठ के प्यार से बात करने की भी फुर्सत नहीं, क्योंकि फिर बुद्धि बच्चों में चली जाती है, उनकी प्रवृत्ति पालना परिवरिश में चली जाती है। कहीं हमारा ऐसा तो नहीं कि शुरुआत तो बाबा से हुई लेकिन फिर परिवार इतना बड़ा है, सेवा का विस्तार इतना बड़ा है कि उससे ज्यादा प्यार हो जाए और बाबा एक साइड में रह जाए। क्योंकि बाबा से बात करने बैठते हैं उस समय अगर हमें प्रवृत्ति याद आती है, कारोबार याद आता है, बाबा के बच्चे याद आते हैं, चलो अब और कुछ नहीं याद आता है, तो वो भी योग नहीं है, है ना? क्योंकि कारोबार से, सेवा से, परिवार से हम अटैच हो गए, उसमें बह गए हैं। तो ये भी एक अपने आप में हमें देखना है। तो प्यार से मन मना भव की स्थिति स्वतः रहती है, योगी सहज बन जाते हैं। और ब्राह्मण बच्चों के लिए मैं समझती हूं अब योगी बनना ही बहुत आवश्यक है, प्रैक्टिकल में। दादी कहती ना, जैसे ज्ञानियों को हम कहते हैं कि ज्ञानी बनो तो आपके सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, है ना? किसी को ज्ञान देते हैं तो आप क्या सुनाते हैं? ऐसे ही सुनाते हैं ना, अपने कोई मित्र संबंधी, अड़ोस पड़ोस वाले कोई भी दुख में है, प्रॉब्लम में है, हम उनको क्या समझाते हैं? आप ज्ञान में आ जाओ, सारी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, ऐसे ही कहते हैं ना। ज्ञानियों को क्या कहेंगे? अज्ञानियों को तो आप कहते हैं कि ज्ञान में आ जाओ तो आपकी सब समस्याएं समाधान हो जाएगी, पर ज्ञानियों को भी तो समस्याएं हैं, है कि नहीं है? तो ज्ञानियों को क्या कहेंगे? योगी बन जाओ। ज्ञानियों को कहेंगे योगी बन जाओ तो ब्राह्मण जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो बाबा के प्यार में डूब जाएगा उससे और कोई ऊपर नीचाई, कमी पेशी नजर नहीं आएगी। जिसने बाबा की याद के सुख का अनुभव किया है उससे और कोई चीजें खींचेगी नहीं, उससे नाम मान शान स्थान की भूख नहीं रहेगी, क्योंकि उससे अपने आप में, बाबा में इतनी प्राप्ति का अनुभव है कि अब उसकी बुद्धि और दृष्टि कहीं डूबेगी नहीं। तो ये महामंत्र भी हमारे जीवन में वर्क कर रहा है और इसके भी अनुभव हमारे पास है। कल बाबा ने हमें तीन शब्द का शिव मंत्र दिया, वो जादू मंत्र, बाबा शब्द ही जादू मंत्र, वो मन मना भव महामंत्र, और बाबा ने कल हमें पुनः याद दिलाया तीन शब्दों का शिव मंत्र। जो मन मना भव के मंत्र के रिजल्ट रूप है, जो बाबा जादू मंत्र को समझ जाएगा वो मन मना भव हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब तक बाप को नहीं पहचानेंगे तब तक योग लग नहीं सकता है। तो बाबा जादू मंत्र को जो समझ जाएगा वो मन मना भव हो ही जाएगा। जिसने बाबा को पहचान लिया उसका बुद्धि योग और कहीं भटकेगा नहीं। हम कैसे योगी बन गए, बाबा के कैसे बन गए? बाबा को पहचान लिया ना, तो और सब कुछ अपने आप छूट गया, बाकी सब कुछ व्यर्थ लगता है ना। और जो मन मना भव हो जाएगा उसका जीवन क्या बन जाएगा, जो शिव मंत्र में बाबा ने बताया कि उनकी मनसा निराकारी। आज की साकार मुरली में भी वही पाठ बाबा ने पक्का कराया, कोई भी नाम रूप में अटकना नहीं है। दो शब्द आज बाबा ने कहा, बहुत अच्छा योग चाहिए, क्वालिटी योग चाहिए। तो मनसा निराकारी स्थिति बाबा ने हमें कही, निराकारी स्थिति हमारी अपनी आत्मस्थिति है, हमारी पढ़ाई का पहला लेसन ही हमें अपने निराकार स्वरूप में स्थित करते हैं। इसलिए पढ़ाई शुरू होती है निराकारी स्थिति से और हमारी पढ़ाई की अंतिम स्थिति भी है निराकारी। तो जितने आत्मभिमानी स्थिति में रहते हैं, देह से न्यारे रहने का अभ्यास करते हैं, अन्य को आत्मदृष्टि से देखते हैं, वहां से ये स्थिति हमारी आरंभ होती है। और बाबा की याद, विदेही बाबा की याद हमें स्वतः विदेही बना देती है। तो निराकारी स्थिति साकारी जीवन में रहते हुए उसके लिए आवश्यक है, क्योंकि दिन भर हमारा जो कार्य है, संबंध है, वो तो नेचुरली व्यक्तियों से है, साधनों से है और शरीर से है। तीन बातें हैं। हम खुद कार्य करते हैं तो शरीर रूपी साधन के द्वारा, हर क्षण आत्मा को शरीर द्वारा कार्य करना है, लेकिन हर क्षण ये अंदर से अवेयरनेस रहे कि शरीर द्वारा कार्य करते हुए भी कराने वाली मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से न्यारी हूं। टोटल ज्ञान का सार अगर हम देखें तो मूल यही अभ्यास है। और इसलिए हर मुरली में ये महावाक्य आता है। लोग समझते हैं बाबा के बच्चे, बाबा रोज मुरली में वही पॉइंट कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। हम समझते हैं कि रोज ये पॉइंट आता है इसलिए ये कॉमन पॉइंट है। एक्चुअली रोज आता है मीन्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भगवान रोज रोज वो कहते हैं। बार बार जो बात कही जाएगी वो वेरी इम्पॉर्टेंट होगी, तब तो कही जाएगी। और हम समझते हैं कि ये कॉमन पॉइंट है, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा मुरली की पॉइंट्स, तो पूछेंगे तो क्या कहेंगे, यही जवाब दे देंगे कि बाबा ने आज कहा अपने को आत्मा समझकर बाप को याद कर। हम समझते हैं ये सामान्य पॉइंट है, ये सामान्य पॉइंट नहीं है, ये मोस्ट अंडरलाइन करने का पॉइंट है। और हम अपनी स्थिति में भी रियलाइज करते हैं कि ये अभ्यास कच्चा रहने के कारण ही विकारी वृत्तियां बदलती नहीं है। जिसकी ये साधना पक्की है, देह से न्यारे रहना और अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये पाठ जितना हमने पक्का किया होगा विकारी वृत्तियां उठेगी नहीं, पुराने संस्कार एक्टिव हो नहीं सकेंगे। और इसलिए इसकी साधना चाहिए। मैं क्यों साधना शब्द यूज कर रही हूं, पूरे लक्ष्य पूर्वक कंटिन्यूअस अभ्यास चाहिए, तब वो नेचुरल स्टेज बनेगी। जो कल बाबा ने कितना विस्तार से कहकर बताया, कर्मेंद्रियों से कराने वाली मैं आत्मा, करावन हार हूं शरीर करन हार है ना? तो मैं आत्मा जब कार्य करती हूं शरीर द्वारा, तो अंदर ये अभ्यास रहे। जब बाबा के कार्य के लिए हम निमित्त बनते हैं और बाबा के कारण हमें नाम मान शान मिलता है, तो हमें अंदर से ये पाठ पक्का रहे कि कराने वाला बाबा है, मैं निमित्त मात्र हूं। तो हर प्रकार से ये पाठ पक्का रहे। खुद के संकल्पों से कार्य करते हैं तो ये पाठ पक्का रहे, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों से करा रही हूं, तो भी निराकार स्वरूप का अभ्यास पक्का हो जाएगा। और मान लो बाबा के कार्य के लिए हम निमित्त बनते हैं, तो कहेंगे बाबा के संकल्पों से कार्य करते हैं, तो हम ये याद रखें कि कराने वाला बाबा है, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। तो हमारी निराकार स्वरूप आत्मभान की स्थिति दोनों प्रकार के कार्य में बनी रहेगी। तो चाहे हम व्यक्तियों से कार्य करते हैं, चाहे साधनों से कार्य करते हैं, चाहे स्वयं के शरीर द्वारा कार्य करते हैं, तो हमें ये पाठ पक्का करना है। और अंदर से निराकारी स्थिति तब बनेगी, आज बाबा ने क्लियर कर दिया, व्यभिचारी नहीं चाहिए। कोई भी देहधारी में बुद्धि फंसी है तो निराकारी स्थिति नहीं बन सकती है, क्योंकि जहां स्वयं के शरीर को भूलने का आदेश है वहां अन्य के शरीर में फंसने का तो सवाल ही नहीं है, है ना? खुद के ही देह को भूलने का आदेश है बाबा ने हमें दिया है। अगर अन्य के देह में फंसे हैं, अन्य आत्मा के शरीर में फंसे हैं, तो वो निराकारी स्थिति में कैसे स्थित हो जाए? क्योंकि संगम युग में बाबा का फरमान है, कोई आत्मा कितनी भी प्यारी हो, मुझे बाबा के साकार मुरली के महावाक्य याद आते हैं, उस प्यारे को प्यार नहीं करना है। कोई आत्मा कितनी भी प्यारी हो, उस प्यारी आत्मा को प्यार नहीं करना है, ये संगम युग में हमें फरमान है। संगम युग की शर्त है एक बाप से प्यार, एक बाप दूसरा न कोई, एक व्रता, अव्यभिचारी योग उसको कहेंगे। ये फाउंडेशन है। अगर ये फाउंडेशन पक्का नहीं है तो हम अभ्यास कितना भी करेंगे स्थिति बनेगी नहीं, क्योंकि फाउंडेशन में मन के अंदर देहधारी बैठा हुआ है। तो ये हमें रोज रोज बाबा से अपनी वफादारी श्योर करनी होगी कि आपके सिवाय और कोई मेरी बुद्धि में नहीं। दुनिया में एक इंसान भी प्यार में वफादारी चाहते हैं, है ना? एक व्यक्ति को प्यार करते हैं और दूसरे के पीछे भी अगर हमारा बुद्धि योग हो तो मनुष्य को भी पसंद नहीं आता है, है ना? उनको भी बेवफा का टाइटल मिल जाता है। तो परमात्मा से प्यार जिनका हूं उनसे भी तो ये अपेक्षा रखी जाएगी ना कि उसका बुद्धि योग और किसी में नहीं। तो निराकारी स्थिति मनसा केवल योग में बैठकर अभ्यास करने की बात नहीं है, ये हम ब्राह्मणों को स्पष्ट हो, जीने के लिए योगी पद्धति को अपनाया है। दो लाइफस्टाइल कही जाती है ना, एक भोगी जीवन पद्धति और एक योगी जीवन पद्धति। तो हमारी योगी जीवन है उसका ये फाउंडेशन है, एक बाप दूसरा न कोई। ये पाठ हम माताओं से पक्का कर सकते हैं। भारत की नारी का ये गायन है एक व्रता, ज्ञान काल में भी कहते हैं भारत की नारी पतिव्रता, स्वप्न में भी अन्य पुरुष को न देखें। तो एक व्रता माना अव्यभिचारी बुद्धि योग, और वो आत्मा स्वतः मन से निराकारी स्थिति में होगी। और जो निराकारी स्थिति का अभ्यास करेगा उनके विकार निर्मूल होते जाएंगे, क्योंकि विकारी वृत्तियां किस लिए उत्पन्न हुई है, देहाभिमान के कारण, दैहिक भावों के कारण, दैहिक आकर्षणों के कारण विकारी वृत्तियां उत्पन्न हुई है ना। हम क्या कहते हैं, देह अभिमान ही सर्व विकारों का मूल कारण है। तो जब हम निराकारी आत्मभिमानी स्थिति में रहेंगे तो नेचुरली दैहिक वृत्तियां हमारी समाप्त होती जाएगी, तो हमारे कर्म निर्विकारी होते जाएंगे। विकारी वृत्तियां उत्तेजित तभी होती है जब देह अभिमान में आते। जो आत्मभिमानी स्थिति में रहते हैं, जो निराकारी बन निराकार की याद में स्थित रहते हैं, उनके सामने कोई भी दृश्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी साधन हो, वो उनको खींच नहीं सकता है। वहां वो आत्मा कमल समान अलिप्त भाव में स्थित रह सकेगी। तो अपने आप कोई भी विकारी वृत्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी है, वो नहीं उत्पन्न हो सकेगी। तो कर्म में निर्विकारी पवित्र जीवन, पवित्र कर्म। इतने तक बाबा ने कहा ना, कोई स्वार्थ भी नहीं, निस्वार्थ स्नेह की बात बाबा ने कही ना, पवित्र कर्म भी निस्वार्थ भाव से। कई बार हम सेवा के कर्म करते हैं लेकिन स्वार्थ भाव से करते हैं, है ना? और स्वार्थ भाव के पीछे भी कोई ना कोई विकार ही है, है ना? व्यक्ति को कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। तो हम अपने कर्म व्यवहार में जो भी हमारी लेन देन है व्यक्तियों से, हमारा हरेक व्यवकर्म, हमारा खाना पीना उठना बोलना देखना सोचना सोना चलना, हर कर्म कितनी आत्माओं के साथ, कितने प्रकार के कर्म से हम संबंध में आते हैं, हमारे वो कर्म पवित्र हों, शांति से हों, निस्वार्थ भाव से हों, कितनी बातें हैं हम खुद देख सकते हैं अपने कर्मों को, क्योंकि वो ठोस चीज है। कर्म ठोस चीज है ना। एक है सोचना, एक है बोलना और एक है कर ही देना। हिसाब बन जाता है ना, जैसा सोचना वैसा पाना नियम नहीं है, जैसा करना वैसा पाना। इसलिए कर्म पर कंट्रोल हो। बाबा ने भी पहले ही ब्रेक कहां लगाई, कर्म में ब्रह्मचर्य, कंट्रोल वहां से किए। अब हम पुरुषार्थ करते हैं कि मनसा भी शुद्ध हो। कर्म में ब्रह्मचर्य ना हो तो मनसा कैसे शुद्ध हो सकती है, और मनसा में सिर्फ सोचे कर्म में ना हो तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि कर्म डीप इंप्रेशन, गहरा प्रभाव छोड़ती। इसलिए कर्म निर्विकारी। बाबा कहते हैं कोई विकार की बांस नहीं आवे, देहभिमान की बदबू नहीं आवे, वो हमारा लक्ष्य है। देवताई स्थिति की एक महिमा क्या है, संपूर्ण निर्विकारी, विकारों के अंश और वंश को समाप्त करना। केवल मोटे रूप से विकारों को जीतना नहीं, सूक्ष्म अंश वंश को समाप्त करना। जैसे ब्रह्मचर्य हम पालन करते हैं, कर्म में पवित्रता, अब और सूक्ष्म पुरुषार्थ, मानसिक रूप से भी वो आकर्षण नहीं। चलो हम वो गुस्सा नहीं करते हैं, हाथ उठा दें, किसी को मार दें, मुख से शब्द निकल जाएं, लेकिन एक दो से नाराज रहना, एक दो से बोलना नहीं, रूठे रहना, अनबन होना, तिरस्कार करना, ये भी क्या है, सूक्ष्म में क्रोध है, अंदर से गुस्सा आता है, इसलिए नाराज रहते हैं। कुछ करना तो है नहीं, क्योंकि कर्म में तो गुस्सा लाना नहीं है, इसलिए नाराज रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक दोस्त से बोलना नहीं, रूठ जाना, एक दूसरे अनबन होना, तिरस्कार करना, घृणा करना, नफरत करना, ये सब क्या है, ये भी तो अंदर से गुस्सा है ना, नाराजगी। वो अभिमान अब नहीं है जो पहले दुनिया में होता था, अपने धन का, अपने नाम मान शान का, है ना, अपनी बुद्धि प्रतिष्ठा पद का, वो अभिमान नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जीवन के अंदर हमें अपने सेवा का अभिमान न आए, अपने सहयोग का अभिमान नहीं आए, अपने पुरुषार्थ का अभिमान नहीं आए। कई बार हमें अपने पुरुषार्थ का भी अभिमान आता है, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, देखो ना, कोई क्लास में आता ही नहीं है, मैं ही रेगुलर आता हूं। अपने अपने सेंटर में तो हम यही समझते, मेरे जैसा कोई सर्विसेबल ही नहीं है, मैं ही दिन रात मेहनत करता। यहां बेहद में आते हैं तो पता चलता है कि ऐसे तो हजारों हैं, भगवान पर जान लुटाने वाले लाखों हैं, पर हम अपने अपने कुएं में समझते हैं कि भाई सबसे बड़ा हूं। यहां बेहद में सागर में आते हैं तो पता चलता है, और सचमुच इतना विशाल कार्य है बाबा का प्रैक्टिकली कोई कहते नहीं इतना करे इतना, अरे भाई ये सागर है, यहाँ आप कितना भी करोगे यहाँ कोई हिसाब ही नहीं है गिनती ही नहीं है इन चीजों की। तो वो भी अभिमान नहीं, कई बार हमें अपनी धारणा का अभिमान होता है सूक्ष्म में, उसकी निशानी ये है कि जो धारणा नहीं करते हैं उससे हम इरिटेट होते रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें सूक्ष्म में अपने किए का अभिमान आता है ना? तो ये बहुत सूक्ष्म है, और रोज बाबा की तुलना में हमें खुद को चेक करना होगा। बाबा हमेशा कहते हैं जो भी कर्म करते हो बाबा से वेरीफाई करो, है ना? और इतना हम बन जाए जो हमारी मंजिल है उस हिसाब से, मान लो हम बनते भी जाए निराकारी निर्विकारी पुरुषार्थ में आगे हो जाए, स्थिति में आगे बढ़ते जाए, तो भी निरंकारी, उसका भी अभिमान नहीं। यह है लास्ट स्टेज, कि निर्विकारी भी हो जाए उसका भी अभिमान न आए। मैं कितना भी महारथी बन जाऊं, अनन्य हो जाऊं, पुराना हो जाऊं, सर्विसेबल बन जाऊं, लेकिन उसका भी मुझे अभिमान नहीं, क्योंकि बनाने वाला बाबा है। निमित्त भाव रहे, इसलिए वो कहानी में बताते हैं ना, कबीर की कहानी मैं कई बार सुनाती हूं, कि भक्त ने कहा मुझे भगवान का दर्शन करना है, तो उसने कहा भी आपको इतने गेट से पास होना पड़ेगा। पहले गेट पर लिखा था कि नाक काटो, भगवान का बनना है तो कल जो बाबा ने कहा था, कल की मुरली में क्या कहा था, लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़नी पड़ेगी। जो लोक लाज रखेगा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, है ना? आसुरी लोक लाज कलियुगी कुल मर्यादाएं छोड़नी पड़े, नाक काटना पड़ेगा। भगवान का बनना है तो नाक काटो। फिर लिखा था कान काटो, आप भगवान के बनेंगे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, लोग निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, टॉन्ट कसेंगे, सुनते हुए भी नहीं सुनना लोगों की बातें। तीसरे पर लिखा था आंख फोड़ो, चलो भाई आपने नाक काटा, कान भी काट दिए, मैंने आप लोगों की भी कमेंट्स नहीं सुनते हैं, लोक लाज छोड़ दी, बाबा के बन गए, अब आपके अंदर धारणा चाहिए, देखते हुए भी नहीं देखना। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में आने के बाद, नंबरवार पुरुषार्थियों को देखने के बाद भी देखते हुए नहीं देखना, क्योंकि यहां भी तो वैरायटी है, वो तो छोड़ के आप आ गए, पर यहां आए तो यहां भी वैरायटी है, अब इसमें माथा खराब नहीं करना है कि भाई ये तो बात बात के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, है ना, नंबरवार पुरुषार्थी है, तो इसको देखते हुए भी नहीं देखना। एक बाबा को देखना है, लक्ष्य को देखना है, और इतना करने के बाद भी लास्ट गेट पर लिखा था मस्तक काटो, समर्पित हो जाओ, बुद्धि को सरेंडर करो। अभिमान नहीं कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने घर बार छोड़ा, देह के संबंध छोड़े, नाम मान शान छोड़ा, अपनी कमियां छोड़ी, अपना तन मन धन छोड़ा, कुछ भी छोड़ा हो, लेकिन उसका भी अभिमान नहीं, बुद्धि को समर्पित करें। क्योंकि जो कुछ हमने किया, हमने अपने लिए किया है, उपकार नहीं किया है बाबा पर। हम समझते हमने सेंटर के लिए इतना किया, बेंजी के लिए इतना किया, किसी के लिए थोड़ी किया है, है ना? हमने दिन रात सेवा की, मेहनत की, हमने खाया नहीं, पिया नहीं, सेवा में सफल किया, अच्छी बात है, पर हमने अपने लिए किया है। मैंने सहनशीलता धारण की, मैंने नम्रता धारण की, अपने लिए की है। किसी पर उपकार हम नहीं करते हैं, इसलिए अभिमान नहीं। तो बाबा ने 33 वर्ष के साकार पार्ट के अंत में जो शिक्षा दी थी, वो पुनः हमें 33 वर्ष के अव्यक्ति पार्ट पर फिर याद दिलाई है। सोचना इस पर कि बाबा का क्या इसके पीछे इशारा है। ओम शांति।